संत नाभादास जी द्वारा लिखी हुई भक्तों की जीवन गाथा भक्तमाल, जिन्हें सरल भाषा में आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे अपने प्रभु जी के परम भक्त अरविंद चौधरी जी।
राधे राधे। राधे राधे। भक्तमाल श्रृंखला में हम आगे का चरित्र कहते हैं श्री बलि जी का। श्री बलि जी भगवान के 12 महाभागवतों में से एक हैं, और बलि जी के पूर्व जन्म की कथा आती है कि इससे पहले जन्म में बलि जी क्या थे। बलि जी एक इस तरह के व्यक्ति थे कि वो सब तरह का नशा करते थे। जितने उल्टे सीधे काम हो सकते हैं वो सब बलि जी करते थे। वैश्यावृत्ति करते थे, सब कुछ करते थे। तो ऐसे घोर अपराधी व्यक्ति, कोई अपराध उनसे नहीं बचा था, कोई ऐसा कर्म नहीं था उल्टा जो बलि ना करते हो। तो एक बार इनसे क्या हुआ कि ये किसी वैश्य के पास जा रहे थे। खूब इन्होंने मतलब नशा किया हुआ था, नशे में टुन्न थे। इन्होंने एक बहुत महंगी माला खरीदी, फूलों की बहुत बड़ी माला, और वो खरीदी वैश्य के लिए कि वैश्य को माला देंगे। लेकिन हुआ यूं कि जैसे ही वो चलने लगे, नशे में डगमगा के वो माला लिए हुए गिर पड़े कहीं। जब इन्हें होश आया, नशा उतरा इनका, तो इनकी आँख खुली, तो इनके पास वो जो भी पैकिंग वैकिंग जो भी जहे में भी वो माला थी, वो माला इन्होंने दिखाई दी, और इन्हें अपने आप पे बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने अपना सारा जन्म कैसे गवा दिया है सिर्फ इन वैश्यों के चक्कर में। सारा उल्टे सीधे कर्म किए हैं, क्योंकि बुद्धि कैसे परिवर्तित हुई। सामने भगवान शिव का एक मंदिर था, मंदिर की तरफ ध्यान गया कि लोग यहाँ मंदिर में देखो कैसे पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और मैं कैसे कर्म में लगा हूँ, मैं कैसा दीनहीन हूँ कि मैंने कभी मैं मंदिर नहीं गया हूँ आज तक। वो माला इनके हाथ में थी, और इन्होंने बड़े भाव से बोला, आज ये माला मैं किसी वैश्य के पास नहीं जाऊँगा, ये माला मैं आज भगवान शिव को धारण कराऊँगा। तो बड़े भाव से गए, ये रोए वहाँ कि मैंने अपना पूरा जन्म खराब कर दिया भगवान, ये माला तेरे गले में, इसे स्वीकार करिए और मुझे सद्बुद्धि प्रदान कर भगवान। ऐसे करके परिक्रमा करके ये थोड़ा प्रसाद लेके बाहर आ गए। वो इनका एक सदकर्म हुआ पूरे जीवन में। ये बताते हैं कि जब जैसे इनकी मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद ये गए यमराज के द्वार, और वहाँ पर इनसे पूछा गया कि भाई तुम्हारा तो सब तो सारे तुम्हारे कर्म ऐसे ही हैं, तुम्हें नर्क मिलेगा, सिर्फ एक कर्म अच्छा है, उसके लिए तुम्हें स्वर्ग जाना है, लेकिन वो बड़ा छोटा सा है। तो तुम्हें पहले तुम नरक भोगना चाहते हो कि स्वर्ग भोगना चाहते हो? बोले अरे नरक तो लंबा है, भोगना ही भोगना है, पहले स्वर्ग ही भोग लेते हैं, थोड़ा सा जो भी है भाई स्वर्ग में जो भी है दे दो। तो इन्हें एक दिन के लिए स्वर्ग का अधिपति यानी स्वर्ग का राजा इंद्रपद इनको दिया गया, एक दिन के लिए। ये चले गए स्वर्ग में, इंद्र सिंहासन पर बैठे, और इन्होंने बैठते ही सिर्फ एक ही दिन था, एक दिन में क्या काम करना शुरू किया, इन्होंने सारा दान करना शुरू कर दिया, सारा स्वर्ग इन्होंने दान कर दिया। इस ऋषि को ये दान कर, इसको परिजात दान कर, इसको ये इंद्र सभा दान कर, इसको सिंहासन, इसको अप्सराएं, सब पूरा स्वर्ग इन्होंने एक दिन के अंदर अंदर सब कुछ दान में दे दिया। जैसे ही इनका एक दिन पूरा हुआ, इन्होंने कहा कि भाई चलिए हमें नरक में लेके। तो यमराज जी, इंद्र, ब्रह्मा जी प्रकट हो, बोले महाराज तुम कहाँ नरक में जाने लायक बचे हो, तुमने इतना बड़ा दान कर दिया, तुमने स्वर्ग ही दान कर दिया, तो तुम्हारे सारे पाप खत्म हो गए हैं, अब तो तुम्हें राजा बन के अगला जन्म मिलेगा, लेकिन तुमने कर्म ऐसे, लेकिन असुरों में राजा बनोगे तुम, क्योंकि कर्म ऐसे थे। तो ये कहाँ प्रकट हुए, प्रहलाद जी के यहाँ जो पुत्र थे विरोचन जी, विरोचन जी के पुत्र राजा बलि हुए, और स्वभावतः इनके हृदय में भगवान की तरफ, क्योंकि प्रहलाद जी भक्त थे, इनके पिता विरोचन जी भगवान के भक्त थे, तो इनके अंदर भी कहीं ना कहीं नारायण के प्रति जो एक भक्ति भाव होता है, वो भगवान के प्रति एक लगाव था प्रहलाद जी की और अपने पिता की वजह से। तो इनका प्रसंग वर्णन करते हैं कि वो समय था कि जब राक्षस हार गए थे बुरी तरीके से, स्वर्ग का आधिपत्य इंद्र के पास था, तो इन्होंने विश्वजीत नाम का एक यज्ञ किया शुक्राचार्य जी को गुरु बना करके, और ब्राह्मणों की बड़ी सेवाएं की। तो उसमें प्रकट होकर के प्रहलाद जी ने भी इन्हें यशस्वी माला दी, उसमें अग्नि देवता प्रकट हुए, उन्होंने भी किसी ने इनको रथ दिए, किसी ने हथियार दिए, अलग अलग अस्त्र शस्त्र ये ले करके, तो इन्होंने दोबारा से अपनी सेना इकट्ठा करके विश्वजीत यज्ञ के बाद इन्होंने अमरावती इंद्र की नगरी पे धावा बोला, और इनके इतना बल देख करके उनके जो हैं होश उड़ गए, देवताओं के, और वो स्वर्ग छोड़ करके भाग गए। इनका आधिपत्य स्वर्ग पे हो गया। स्वर्ग पे आधिपत्य होते ही शुक्राचार्य ने इन्हें कहा कि तुम 100 अपने यज्ञ पूरे कर लो, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए तो आप इंद्रपद के लिए योग्य हो जाते हैं, तो नहीं तो वो बाद में फिर आपको भगा देंगे इंद्र। तो इसलिए आप अगर आपके 100 के 100 यज्ञ पूरे हो जाते हैं तो फिर इंद्र आपको नहीं भगा पाएंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है महाराज, करवाइए। तो उनकी अपने गुरु की आज्ञा में ये 100 यज्ञ पूरे करने जा रहे थे। 99 यज्ञ हो चुके थे, 100वां यज्ञ चल रहा था। इधर जब 99 यज्ञ हुए थे तो देवता बेचैन हो गए थे, उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा था। और इधर अदिति जो थी देवताओं की माँ, उन्होंने भी अपने पुत्रों को देख करके उन्होंने कश्यप ऋषि से आग्रह किया था कि मेरे तो पुत्र जो हैं देवता सब लोग इधर उधर भटक रहे हैं, क्या करें। तो उन्होंने एक वर्ष का पियोव्रत किया था। पियोव्रत से भगवान प्रसन्न हुए थे और उन्होंने कहा था भगवान की भगवान ही उनके गर्भ से प्रकट हुए, तो वामन भगवान। अब वामन भगवान ये 100वां यज्ञ है और भगवान छोटे से हैं और भगवान भिक्षुक के रूप में उनके यहाँ जाते हैं, बलि के यहाँ द्वार पे जाके भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा का नियम ये था कि भाई स्वयं राजा भिक्षा दें। उन्होंने कहा अभी जो चाहिए दे दो। बोला नहीं, वो तो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि राजा ही आए। बोला ठीक है, बुलाओ कौन है। ये यज्ञ में दीक्षित थे तो उठ नहीं सकते थे, बुलाया है वहीं, कौन है भाई, क्या चाहिए। बोला महाराज चाहिए तो, लेकिन उनको देख करके शुक्राचार्य जी समझ गए। उन्होंने कहा 3 पग भूमि चाहिए, वो समझ गए ये तो भगवान नारायण है विष्णु है, 3 पग भूमि में सब कुछ ले लेंगे तेरा। वो कहने लगे अगर ये नारायण है और 3 पग भूमि मांगने के लिए आए हैं मुझसे, पहली बात तो नारायण घोर तपस्या करने के बाद मिलते हैं। मेरे पितामह यानी प्रहलाद जी मेरे दादा, उन्होंने भगवान के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया था, तो अगर ये खुद आए हैं भगवान विष्णु चल के तो मैं क्यों ना दे दूं इन्हें, तो मैं तो संकल्प करूंगा 3 उसका। भगवान ने कहा संकल्प करो तो हम माने। तो ये संकल्प के तैयार हो गए। शुक्राचार्य जी ने इन्हें श्राप दिया कि ठीक है तुम अपनी सारी संपत्ति से विहीन हो जाओ, सारी संपत्ति तुम्हारी चली जाएगी, नष्ट हो जाएगी। बोले महाराज अगर भगवान लेते हैं तो हमें कोई परवाह नहीं है, और ये अगर ये साधारण बालक है जो 3 पग लेके अपना काम कर लेगा कोई दिक्कत नहीं हमें। तो उन्होंने संकल्प किया, संकल्प करते ही भगवान का विग्रह बढ़ना शुरू हुआ वो तो आकाश पाताल क्या एक कर दिया उन्होंने। 1 पग में पूरी धरती, 2 पग में उन्होंने पूरा आकाश पाताल स्वर्ग नाप लिए, और 3 में वो बोलने लगे कि 3 पग मैं कहाँ रखूँ। बलि जी तो घबराए। उसी वक्त एक घटना और घटी थी कि जब इनकी एक बहन थी बलि की, उन्होंने जब इनको आते हुए देखा था ब्रह्मचारी के रूप में, बावन भगवान इतने सुंदर लग रहे थे कि उसने कहा था कि अगर ये मेरा पुत्र हो तो इसको अपना दूध पिलाते हुए अपने वक्षस्थल से चिपटा हुए कितना आनंद आएगा। लेकिन जब भगवान ने अभी इसका सब कुछ छीन लिया, बलि का सब कुछ अभी भगवान का हो चुका है, और इन भगवान ने उसको कड़े स्वर में कहा कि अब बांध लो इसे, भगवान के पार्षद इसे बांध लो, ये अपनी वाणी से मुकर रहा है 3 पग का बोल करके, अभी सिर्फ 2 पग दिए हैं इसने तो इसको नरक में जाना पड़ेगा क्योंकि अपने वचन झूठा, इसके वचन झूठे हो रहे हैं, सारी संपत्ति इसकी नष्ट हो चुकी है, राक्षस सारे भगा दिए गए वहाँ से, बलि को बांध के वहाँ पे पाशों में बांध लिया गया है, और उस भगवान इसे डरा रहे हैं कि तुझे घोर नरक की यातनाएं मिलेंगी, तूने वचन दे करके अपने वचनों से मुखर हुआ है तू। लेकिन वो घबराया नहीं, उसकी पत्नी से पूछा, उसकी पत्नी आई वहीं पे, पत्नी ने कहा कि भगवान सब कुछ तो आपका है, आप मारो चाहे छोड़ो सब कुछ, सब जीव आपके हैं, हम भी आपके हैं। वो भी घबराए नहीं, सिर्फ 2 व्यक्ति थे जो घबराए नहीं। उनकी जो बहन थी जो बोल रही थी पहले कि हम स्तन पिलाते अपना, हम दूध पिलाते, वो बोल उसके मन में आया कि अगर मेरा ऐसा पुत्र होता तो मैं तो विष लगा के अपने स्तनों को उसको पिला देती। तो ये अगले जन्म में पूतना बनी कि इसकी भगवान ने वो इच्छा भी पूर्ण करी कि तुम अपने पुत्र की तरह बस स्तन भी पिला दो और विष लगा के पिला दो, तो कोई नहीं उसका कल्याण वहाँ किया भगवान ने। अभी बलि जी पे आते हैं। बलि जी को भगवान ने बहुत डराया, यहाँ तक डराया कि देवता डर गए, सारे ऋषि मुनि डर गए, भगवान क्रोध में हैं पूरे, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी डर गए। ब्रह्मा जी नहीं डरते हैं लेकिन ब्रह्मा जी डर गए कि हे भगवान, एक भक्त के साथ इतना ऐसा कुछ हो रहा है। ब्रह्मा जी ने भगवान की उस टाइम स्तुति की है, हे भगवान इन्हें छोड़ दो, ये तो अपना सब कुछ हार चुका है आपके चरणों में और ये फिर भी आपको सब कुछ देने को तैयार, इस पर बचा ही नहीं है कुछ, तो ये क्या दे, तो भगवान इसे इस पास से मुक्त कर दीजिए इसे। लेकिन भगवान उसका धैर्य और उसकी बुद्धि देखना चाहते थे। बलि ने कहा नहीं महाराज, अगर संपत्ति का राजा सारी संपत्ति का मालिक है तो वो संपत्ति से तो बड़ा होता है ना, तो महाराज अगर सारी संपत्ति चली गई तो मालिक तो बचा है ना, अभी तो एक पग तो मालिक के ऊपर भी रख सकते हो ना आप, तो तीसरा पग मेरे सर पे रखिए, अब मैं भी आपका हूँ। तो भगवान ने पग उसके ऊपर रखा और उसे रसातल में उतार दिया और वहाँ का राज्य जो है बलि को दिया, वहाँ राजा बनाया। और भगवान ने कहा कि भाई अब तुम्हारे द्वार पे हम, ये भक्ति की महिमा है कि भगवान उसके वश में हो गए, वो डरा नहीं। भगवान उसको देखना चाहते थे कि भक्त अंतिम समय तक किस अवस्था में पहुँचता है, कि क्या ये घबरा के बोल देगा कि भगवान तुमने तो हमारे साथ अन्याय कर दिया कि नहीं। भक्त यही होते हैं, भक्त इसीलिए 12 भागवतों में नाम है उनका, कि वो अंत तक भी अपनी उस भक्ति से पीछे नहीं हटे, वो दृढ़तापूर्वक बने रहे कि नहीं नारायण है तो सब कुछ इनका है। इसी प्रकार उनकी स्त्री नारायण है तो भाई सब कुछ इनका है, वही भगवान ने दिखाया और उनको वरदान दिया कि इस जन्म में तो तुम और ये राज्य भोगो और यहाँ पे तुम्हारे द्वारपाल बन के हम रहेंगे, जब चाहो तुम दर्शन करो। और इसके बाद अगले मनवंतर में, ये मनवंतर जैसे ही पूरा होगा 8वें मनवंतर में राजा इंद्र की जगह स्वर्ग के तुम ही बनोगे। तो ये श्री बलि जी की कहानी है। तो आगे भक्तमाल की अगली श्रृंखला में, अगले चरित्र में फिर हम किसी चरित्र के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राधे।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।